ஹரி கிருஷ்ணன். ஸ்ரீமத் பாகவதம் தீசரா ஸ்கந்த் அத்தியாய 16 ஸ்லோக் நம்பர் 31 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। வசுதேவசுதம் தேவம் கம்சசாடூரமர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரு வஞ்சீ விபூஷிதகரா நவநீரதாபா பீதாம்பர தருணபிம்பஃபல தரோஷ்டா பூரணேந்து சுந்தர முகாத் ஹரவிந்த நேத்ரா கிருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்வ அஹம் ந ஜானே. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயாமுதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர பவதி நயேஷ்டிகி. பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதார பக்தாக்யம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரி கிருஷ்ண ஹரி கிருஷ்ண 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 ஹரி 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 ராம ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. கிரந்த்ரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாபுராண் கி ஜெய். தீசரா ஸ்கந்த் அத்தியாய 16 ஸ்லோக் நம்பர் 31. ஜப் வைகுண்ட் கே தோ துவார்பாலோ ஜெய் ஆர் விஜய் கோ சதுஷ்கிரா குமார் நே ஷிராப் தே தியா ஔர் உஸ்கே உபராந்த் वो सब मुनि कुमार भगवान से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, भगवान हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप हमें कोई भी दंड दे दीजिए, हमें आपके द्वारपालों पर क्रुद्धित नहीं होना चाहिए था। लेकिन भगवान ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो पहले से ही निर्देशित था, क्योंकि भगवान को वीर रस का आनंद लेना था और वीर रस का आनंद लेने के लिए इस भौतिक जगत में तो कोई भी भगवान के साथ युद्ध कर नहीं सकता। भगवान के साथ युद्ध करने के लिए कोई पराक्रमी योद्धाओं की आवश्यकता है, इसीलिए भगवान अपने ही धाम से अपने द्वारपालों को इस भौतिक जगत में बस लीला में भाग लेने के लिए भेजते हैं, ताकि भगवान इतनी सुंदर और मनोहारिणी लीलाएँ करें जिसे हम जैसे पतित लोग श्रवण करके भगवान के प्रति अपने प्रेम और आकर्षण को तीव्र कर सकें। तो जय और विजय को श्राप जब मिल गया तो भगवान उन्हें सांत्वना देते हैं कि देखो, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम पृथ्वी पर जाएंगे, लीला करेंगे और फिर मैं जल्दी से आप लोगों को वापस से वैकुंठ लेके आऊँगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान श्लोक नंबर 31 में कहते हैं, मई सौरंभ योगे न निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्येष्यतम निकाशम मे कालेनाल पीयसा पुनः मई सौरंभ योगे न निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्येष्यतम निकाशम मे कालेनाल पीयसा पुनः मई सौरंभ योगे न मई मना मुझ में और सौरंभ योगे न सौरंभ कहते क्रोध में योग मतलब भगवान के साथ जुड़ने का अभ्यास तो वैसे तो भगवान के साथ प्रेम के साथ जुड़ना होता है लेकिन जय और विजय को भूमिका करनी थी भगवान के शत्रु की तो भगवान उन्हें कहते हैं मई सौरंभे योगे न कि तुम क्रोध के द्वारा सदैव मुझसे जुड़े रहोगे निस्तीर्य और निस्तीर्य मतलब से मुक्त किया गया ब्रह्म हेलनम ब्राह्मणों की अवज्ञा का फल अब ब्राह्मणों की अवज्ञा का फल मिला है तुमको तो राक्षस बनोगे लेकिन मैं आपको अपने जब मुझ में युक्त रहोगे ना नित्य मेरा स्मरण करोगे तो प्रत्येषतम अर्थात वापिस आएंगे आप फिक्र मत करो मैं आपको वापस प्रत्येषतम निकाशम में निकाशम निकट मेरे निकट ही रहोगे ना मन तो सदैव मेरा ही स्मरण करेगा तो मैं लेके आऊँगा तो मनो जय और विजय ने कहा प्रभु अब बहुत समय लगाओगे तब भगवान कहते हैं काले नल्पीय साप काले नल्प काल काल क्रम में अल्पय अत्यंत अत्यंत अल्प समय में बहुत जल्दी लेके आऊँगा तुम मत डरो मैं वापस से तुम्हें बहुत जल्दी लेके आऊँगा। अनुवाद भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठवासियों को आश्वस्त किया क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अत्यल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सौरंभ योगे न अर्थात यदि क्रोध के साथ भी भगवान के साथ तन्मय अपने आप को किया जाता है कंटिन्यूस क्रोध में भी यदि भगवान को स्मरण किया जाता है तो भगवान अपना लेते हैं तो जो प्रेम के साथ सदैव भगवान का स्मरण करते होंगे जो सदैव भगवान को प्रेम से के साथ योग बनाए कर भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्रेम करते होंगे उनके प्रति वो कितने कृपालु होंगे। इसलिए हमें सदैव भगवान के साथ अपना जो नाता है ना स्मरण का किसी भी स्थिति में सारे बहुत सारे है ना भगवान के साथ संबंध जोड़ने के तरीके हैं लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है जानते हो स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम ना जातु चित्त सर्वविद्धि निषेधाशु एतयोर एव किंकर जितनी भी विधि और निषेध हैं वो इन दो चीज़ों के किंकर हैं अर्थात उनकी दास उनके दास हैं। क्या दो चीज़ें हैं स्मर्तव्यम सततम कृष्ण कंटिन्यूस भगवान को स्मरण करना इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है भक्ति में बस हर एक सांस में स्मरण होना चाहिए जिस समय स्मरण की तार टूटे उस समय मर जाए जीव इतना तीव्रता के साथ स्मरण होना चाहिए कृष्ण का क्योंकि किसी भी समय हतमय शरीर से निकल सकती है और अगर वो समय कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को स्मरण करते हुए बीता तो फिर आना पड़ेगा ना जाने फिर वापस ऐसा अवसर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरा युद्धजा हर एक काल में हर एक क्षण में मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। इसलिए भगवान को स्मरण करना बहुत आवश्यक है। विस्मर्तव्यो न जातु चित, और भगवान को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमेशा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। हर क्षण भगवान को स्मरण करो, कभी भी भगवान को ना भूलो। सबसे बड़ी भक्ति यही है। अब यहाँ पर जय और विजय को भगवान कहते हैं, सौरम्भ योगे नस्तीर्य ब्रह्म हेलनम। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, लेकिन तुम्हें मुझे स्मरण करते रहना है, और जैसे तुम मुझे स्मरण करोगे, भले वो क्रोध से भी होगा, तो भी ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से तुम मुक्त हो जाओगे। इसका मतलब है, यदि हम भगवान को स्मरण करते हैं, तो जीवन में, पुराने जीवनों में, जितने जितने जन्मों में जो जो हमने अपराध किए हैं, पाप किए हैं, केवल भगवान को स्मरण करने से वो सारे अपराध नाश हो जाते हैं, और हम पुनः भगवान के साथ काले नाल पर यसा, बिल्कुल थोड़े ही समय में, एक ही जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अनुवाद, भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठवासियों को आश्वस्त किया, क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अति अल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों द्वारपालों को यह सलाह दी कि क्रोध में भक्ति योग के अभ्यास के बल पर वे ब्राह्मण शाप से मुक्त हो जाएंगे। श्रीला मध्व मुनि ने इस संदर्भ में टिप्पणी की है कि भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण शाप से, अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप, जिस किसी अन्य साधन से निवारण नहीं किया जा सकता, भक्ति योग द्वारा निवारित हो जाता है। मनुष्य भक्ति योग का अभ्यास कई रसों में कर सकता है। रस तो 12 है, 5 प्राथमिक तथा 7 गौण। 5 प्रमुख रसों से प्रत्यक्ष भक्ति योग की रचना होती है, किंतु 7 गौण रस अप्रत्यक्ष होकर भी भक्ति योग के अंतर्गत गिने जाते हैं। यदि इनका प्रयोग भगवान की सेवा में किया जाए, दूसरे शब्दों में भक्ति योग में सभी सम्मिलित हैं। यदि कोई किसी तरह से पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, तो वह भक्ति योग में लग जाता है, जैसा कि श्रीमद्भागवतम 10.21.15 में कहा गया है। काम क्रोध भयम्। गोपियां काम संबंध में भक्ति योग द्वारा कृष्ण के प्रति आकृष्ट थी, उसी तरह से कंस अपनी मृत्यु के भय के कारण भक्ति योग के प्रति आसक्त था। इसी तरह भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि भगवान का शत्रु बनने तथा सदैव उनके विषय में सोचने पर अति शीघ्र मनुष्य का उद्धार हो सकता है। कहा गया है, विष्णु भक्त स्मर्तो दैव आसुरस तद विप्रया। विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं, जबकि अभक्तगण आसुर कहलाते हैं। विष्णु भक्त स्मर्तो देव आसुर तद विप्रया। जो विष्णु के भक्त हैं वही देव हैं, और जो नहीं है वो असुर है। किंतु भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि सुर तथा असुर दोनों ही इससे लाभ उठा सकते हैं, यदि वे भगवान का सदैव चिंतन करें। भक्ति योग का मूल सिद्धांत है परमेश्वर के विषय में निरंतर चिंतन करना। श्रीमद् भगवद गीता 18.65 में भगवान कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो। सदैव मेरा चिंतन करो, चाहे कोई जिस तरह से चिंतन करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान का चिंतन करना ही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने विभिन्न रसों की चर्चा की है कि भक्ति जो है उसका अभ्यास हम अलग अलग रसों में कर सकते हैं। पांच रस तो मुख्य हैं, जैसे शांत रस, वात्सल्य और सखा रस, दास रस और माधुर्य रस। ये तो मुख्य हैं जिनमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। लेकिन भगवान के साथ कोई भी रस में, काम, क्रोध, भय में भी यदि कोई भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, जैसे गोपियों ने काम भाव से, कंस और शिशुपाल ने क्रोध भाव से, या यदि कोई भय से भी भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, मेन भक्ति योग का उद्देश्य क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना, भगवान का चिंतन करना, भगवान को स्मरण करना। तो इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे कोई जिस तरह से भी चिंतन करे, इससे कोई अंतर ही नहीं पड़ता, भगवान का चिंतन करना ही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक लोकों में पाप कर्मों की विभिन्न कोटियाँ हैं जिनसे ब्राह्मण या वैष्णव का अनादर करना सबसे अधिक पाप पूर्ण है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य इस गंभीर पाप से भी मात्र विष्णु का चिंतन करके, वह भी अनुकूल रीति से नहीं अपितु क्रोध में करके छुटकारा पाप प्राप्त कर सकता है। मयि संरम्भ योगेन निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम, ब्रह्मणों का अपमान करने का जो ये अपराध है जिसका तुम्हें दंड लगा है, मयि संरम्भ योगेन, क्रोध से मेरा स्मरण करो और प्रत्येशतम निकाशम में जल्दी से तुम उससे मुक्त हो जाओगे। काले नाल पर ये सब वापिस तुम्हें अपने पास लेके आऊँगा, समय नहीं लगेगा। इसका मतलब है यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि विष्णु का चिंतन करके, वह भी अनुकूल रीति से नहीं अपितु क्रोध करके छुटकारा पाया जा सकता है। इस तरह जो अभक्तगण सदैव विष्णु का चिंतन करते हैं वे भी सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च प्रकार की सोच है। इस युग में भगवान विष्णु का चिंतन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन के द्वारा किया जा सकता है। भागवत के कथनों से ऐसा लगता है कि यदि कोई कृष्ण का चिंतन शत्रु के रूप में भी करता है तो यह विशेष योग्यता है। विष्णु या कृष्ण का चिंतन इसके सारे पापों को दूर डालता है। श्रील प्रभुपाद की जय। वैसे तो भक्ति का सूत्र है अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जना, कि जो भगवान को अच्छा लगता है, भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़ना है तो बस वही कार्य करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अनुकूलस्य संकल्पो, और इससे हर वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि हमें वही कार्य करना चाहिए जो भगवान को पसंद है, और प्रतिकूलस्य वर्जना, जो भगवान को पसंद नहीं है वो उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर तो भगवान का स्मरण उसी पर बल दिया गया है। किसी भी भाव से यदि जीव भगवान का स्मरण करता है तो भगवान इतने कृपालु हैं कि जीव के समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं और पुनः अपने धाम में लेके जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा, ये भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं, इन पर जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। मयि संरम्भ योगेन निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम, यदि क्रोध के साथ भी आप मेरा स्मरण करते रहोगे, मेरे साथ योग बनाए रखोगे, तो जल्दी से जल्दी तुम ब्रह्म हेलनम से भी मुक्त हो जाओगे। आगे भगवान जय और विजय से कहते हैं द्वास्थावादिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषण सर्वातिशयया लक्ष्म्या दृष्टं सं दिश्यमाविशत् द्वास्थावादिश्य भगवान् विमानश्रेणीभूषणम् सर्वातिशयया लक्ष्म्या दृष्टं सं दिश्यमाविशत्। शब्दार्थ द्वास्थ अर्थात द्वारपालों को आदिश्य भगवान, भगवान ने आदेश ये आदेश दिया। उसके ऊपर हम क्या आदेश दिया कि तुम क्रोध के साथ मेरी भक्ति करना और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ, विमान श्रेणी भूषणम, उच्च कोटि के विमानों से सदैव भूषित, सर्व अतिशयया हर प्रकार से अत्यधिक ऐश्वर्यशाली लक्ष्म्या ऐश्वर्य, जुष्टम सौम देश्य, जुष्टम मना से सजा हुआ, सौम मना अपने, दिश्य मतलब धाम में आविशत वापस चले गए। तो ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर भगवान अपने धाम लौट गए, जहाँ पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक तमक रहती है। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक से स्पष्ट है कि सारी घटनाएं वैकुंठ लोक के प्रवेश द्वार पर घटी। दूसरे शब्दों में मुनिगण वस्तुतः वैकुंठ लोक के भीतर नहीं अपितु द्वार पर थे। यह पूछा जा सकता है कि यदि वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए तो फिर वे भौतिक जगत में किस तरह लौट आए, किंतु वास्तव में उन्होंने प्रवेश किया ही नहीं, अतः वे लौट आए। ऐसी ही अनेक घटनाएं हैं जहां महान योगी तथा ब्राह्मण अपने योगाभ्यास के बल पर इस भौतिक जगत से वैकुंठ लोक गए, किंतु उन्हें वहां रुकना नहीं था, वे वापिस आ गए। यहाँ पर इसकी भी पुष्टि की गई है कि भगवान अनेक वैकुंठ के विमानों से गिरे थे। यहाँ पर वैकुंठ लोक को भव्य ऐश्वर्य से युक्त बताया गया है, जो इस भौतिक जगत से कहीं अधिक था। एक तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि जय और विजय भी वैकुंठ के दरबान थे, दरवाजे पर थे तो वो वापस आ गए। भगवान ने कहा मेरे धाम के अंदर जो आता है वो वापस नहीं निकलता, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो जो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चतुष कुमार भी बाहर ही खड़े थे, भगवान आदेश देकर अपने धाम के अंदर चले गए। आगे कहते हैं देवताओं समेत अन्य सारे जीव ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा से उत्पन्न है और ब्रह्मा भगवान विष्णु से उत्पन्न है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवा, अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु भौतिक जगत की समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम हैं। जो यह जानते हैं कि भगवान विष्णु सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, जो सृजन विधि से ज्ञात हैं, और जो यह समझते हैं कि विष्णु या कृष्ण समस्त जीवों में सर्वाधिक पूज्य विषय हैं, वे वैष्णव के रूप में विष्णु की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्र भी इसकी पुष्टि करते हैं, ओम तत्सत ओम तद विष्णु परम पदम। जीवन का लक्ष्य विष्णु को समझना है। भागवत में भी अन्यत्र इसी की पुष्टि की गई है। मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि विष्णु परम पूज्य विषय हैं, इस भौतिक जगत में अनेक पूज्य विषयों की सृष्टि करते हैं, अतएव वे नीचे गिर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान विष्णु के वैभव के विषय में बताया गया कि भगवान का वैभव है संपूर्ण, बहुत सारे विमान हैं और वहाँ पर भगवान का बहुत सारा ऐश्वर्य है ऐसे धाम में। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान विष्णु से बढ़कर, भगवान कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं है, और सारे जितने भी सृष्टि के कार्य हैं वो भगवान करते हैं। आगे भगवान तो चले गए, फिर जय और विजय का क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, ताओ तू गीरवाण
ऋषभ हो दुस्तारा धरि लोकत हतश्रयो ब्रह्म शापात अभूतम विगतस्मयो। ताओ तू, ताओ मना वे दोनों द्वारपाल, तू यानी लेकिन, गीरवाण ऋषभ हो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, दुस्तरात बच सकने में असमर्थ, हरि लोकता हरि के दाम वैकुंठ से, हतश्रयो मतलब वो सौंदर्य तथा कांति से हीन हो गए, ब्रह्म शापात अभूतम, ब्रह्म शापात यानी ब्राह्मणों के शाप से अभूतम हो गए विकतस्मयो खिन। यहाँ पर एक बात और बताई जा रही है, भले ही भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान वीर रस का आनंद ले रहे हैं, इसीलिए जय और विजय को श्राप मिला, लेकिन फिर भी हमारे लिए शिक्षा क्या है कि हम चाहे कितने भी महान हो जाएंगे, कि भगवान के धाम तक भी चले जाएंगे, लेकिन यदि ब्राह्मण या वैष्णव का अपमान किया तो वहाँ से भी हमें नीचे गिरना पड़ेगा। चाहे कितने ही बड़े भक्त बन जाएं, लेकिन हमें हमेशा ब्राह्मणों का और वैष्णवों का आदर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मणों और वैष्णवों का दिया हुआ शाप कभी भी निस्तर नहीं होता है, उसको हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए। भक्ति होती है या नहीं होती है वो आपका अपना एक ना कार्य है, लेकिन इतना तो कम से कम हम सब कर सकते हैं कि किसी भी वैष्णव और ब्राह्मण का कभी निरादर ना करें, ताकि जितना कुछ हमने पुण्य किए हैं, भक्ति की है, वो संचित रहे, वरना तो जो कुछ हमारे पास है वो सब नाश हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के शाप से उतर गए थे, खिन्न हो गए और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। ब्रह्मा जी देवताओं को कहते हैं कि जय और विजय का पतन देवताओं से देखा नहीं गया, इसलिए तदा विकुंठ दीक्षणात् तयोर्निपतमानयो हाहाकारो महानासीत् विमानाश्रेषु पुत्रका। तदा विकुंठ दीक्षणात्, तदा तब विकुंठ परमेश्वर के दीक्षणात् धाम से तयो दोनों निपतमानयो अर्थात गिर रहे थे। हाहाकारो महानासी, हाहाकार यानी निराशा में गरजते हुए, महान आसीत यानी घटित हुआ, विमान अश्रयेशु सर्वोत्तम विमान में पुत्र का। हे देवताओं, अनुवाद, तब जब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे तो अपने भव्य विमानों में बैठे हुए सारे देवताओं ने निराश होकर उत्कट हाहाकार किया। सारे देवता दुखी हो गए थे जय और विजय का पतन देखने के उपरांत, और वो कहाँ गए उसके विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं, तावेव यदुना प्राप्तो पार्षद पर प्रवरो हरे दितेर जठर निर्विष्टम कश्यपम तेज उल्बणम तावेव यदुना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरे दितेर जठर निर्विष्टम कश्यपम तेज उल्बणम। तावेव यदुना प्राप्तो, ताव मना वे दोनों द्वारपाल, एव मना निश्चय ही संबोधन किया, अधुना अब प्राप्तो यानी प्राप्त करके, पार्षद प्रवरो यानी महत्वपूर्ण संगी, हरे यानी भगवान, वो भगवान के इतने महत्वपूर्ण संगी थे, पार्षद थे, और अब कहाँ चले गए, दितेर जठर निश जित दिते यानी दिति के जठर यानी गर्भ निर्विष्टम यानी प्रवेश किया। कश्यप तेज उल्बणम, कश्यप यानी कश्यप मुनि का तेज यानी वीर्य, उल्बणम यानी अत्यंत प्रबल। अनुवाद, ब्रह्मा ने आगे कहा, भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने अब दिति के गर्भ में प्रवेश किया और कश्यप मुनि के बलशाली वीर्य से वे आवृत हो चुके थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीति से संतान का गर्भधान करने के समय हमारी कैसी मनोस्थिति होनी चाहिए उसके विषय में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण है कि मूलतः वैकुंठ लोक से आने वाला जीव किस तरह भौतिक तत्वों में बंदी हो जाता है। जीव पिता के उस वीर्य में शरण पाता है जो माता के घर में प्रविष्ट किया जाता है और माता के पासीकृत डिंब की सहायता से जीव विशेष प्रकार के शरीर में पड़ता है। चाहे वैकुंठ से पतित हो या स्वर्ग लोक से, जीव कितनी निकृष्ट हालत में जाता है उसका यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। इस संदर्भ में यह स्मरण रखना होगा कि कश्यप मुनि का मन तब व्यवस्थित नहीं था जब उन्होंने हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु नामक दोनों पुत्रों का गर्भधान किया था, अतः उनका जो वीर्य स्खलित हुआ वह एक साथ अतीव शक्तिशाली एवं क्रोध के गुण से मिश्रित था। अर्थात यहाँ पर कश्यप मुनि की मना स्थिति बताई जा रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थे और शक्ति भी थी उनमें, तो उसी तरह से क्रोध और शक्ति के समय में उनका जो वीर्य स्खलित हुआ उसके अंदर भी यही भाव था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिशु का गर्भधान करते समय मन को धीर तथा भक्ति में ही रखना चाहिए। इस कार्य के लिए वैदिक शास्त्रों में गर्भधान संस्कार की संस्तुति की गई है। यदि पिता का मन संयुक्त नहीं होता तो स्खलित हुआ वीर्य बहुत अच्छा नहीं होगा। इस तरह पिता तथा माता से उत्पन्न पदार्थ के भीतर लिपटा हुआ जीव हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु जैसा असुर और राक्षस ही होगा। गर्भधान की परिस्थितियों का सावधानी के साथ अध्ययन करना चाहिए। यह अति महान विज्ञान है, क्योंकि संतान उत्पत्ति भगवान के कार्य में सहायता करना है, क्योंकि भगवान हर एक जीव को इस भौतिक जगत में एक अवसर प्रदान करना चाहते हैं जिसके द्वारा वो जन्म मरण के चक्कर से छूट सके, और माता पिता इस जीव आत्मा पर कृपा करते हैं ताकि उन्हें पुनः इस भौतिक जगत में दोबारा ना लौटना पड़े। ऐसे आचरण के द्वारा इस तरह से वो अपने जीवन को प्रारंभ करें। इसलिए ये माता पिता का कर्तव्य है कि गर्भधान के समय उनका मन शांत होना चाहिए। भगवान की भक्ति के उपरांत ये भक्ति समझकर ही ऐसा कार्य करना चाहिए जिसका के शास्त्रों में बताया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मरते दम तक भगवान की सेवा करती रहूं और गुरु और गौरंग को प्रसन्न करती रहूं। हरे कृष्ण।